पृष्ठ संख्या 44 सूरदास। सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि उनका सीमित क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। भारतीय परंपरा और जीवन क्रम में मूल इकाई परिवार के सौहार्द और संघर्ष ही कवियों के लिए उपजीव्य बने हैं। यहाँ के आदि काव्य इसी वस्तु के विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दो प्रकार के परिवारों की ही गाथाएं हैं। स्पष्ट ही परिवार की ये गाथाएं महाकाव्य के विधान में ज्यादा दक्ष ढंग से चित्रित हो सकती हैं। अतः हिंदी कविता का आरंभिक मुक्तक रूप कबीर और विद्यापति में जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों को लेकर चलता है। इसके पहले सिद्धोनाथों के विरक्त व्यक्तित्व में तो परिवार चित्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वीराज रासव और पद्मावत में परिवार बसने का उपक्रम और संघर्ष तो चलता रहता है, पारिवारिक जीवन के अपने चित्र अपेक्षाकृत कम हैं। सूर की विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपनाकर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। आगे चलकर तुलसीदास रामचरितमानस में एक संतुलन बनाने का यत्न करते हैं, परिवार की व्यवस्था के लिए संघर्ष का चित्रण करने और स्वयं परिवार जीवन के अपने चित्रण के बीच। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। उनकी दृष्टि के केंद्र में नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं। माता पिता की एक जोड़ी वसुदेव और देवकी की है, दूसरी नंद और यशोदा की। कृष्ण का व्यक्तित्व इन्हीं के बीच फेरी लगाता है और वात्सल्य भाव दोनों पक्षों में इतना सघन है कि पाठक को बहुत बार यह हिसाब रखना कठिन हो जाता है कि इनमें से वस्तुतः कृष्ण के असली माता पिता कौन हैं। जिस एक बिंदु से वे स्वयं यह दार्शनिक सवाल उठा देते हैं, को माता को पिता हमारे, मोसो कहत मोल को लीनो, में कवि का जितना तीखा व्यंग है उतना ही गहरी आत्मीयता है। परिवार के अधिकतर आंतरिक प्रसंगों में अपने को सीमित रखने के कारण सूर में बाह्य जीवन के संघर्षों का चित्रण कम है, गृहस्थ जीवन की तन्मयता अधिक है। फिर इस स्थिति का विरोधाभास आगे यूं उभरता है कि कृष्ण बाल रूप में तो वात्सल्य के ऐसे सघन आलंबन रहे, पर वयस्क रूप में उसके आश्रय कहीं चित्रित नहीं हुए। कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्णावतार का कहा गया है, पर उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष ब्रज के बाल कृष्ण और युवा प्रेमी, महाभारत के योद्धा और कूटनीतिज्ञ, गीता के दार्शनिक और द्वारका के ऐश्वर्यशाली राजा धीराज क्रमशः अलग अलग ही चित्रित हुए हैं। उनकी आंतरिक संगति बैठाना रचनाकारों द्वारा कम हुआ है। यही कारण है कि पूर्णावतार होकर भी उनके खंड चित्र ही सामने आते हैं। शायद पूर्णावतार की रचनात्मक नियति और परिणति यही होनी थी। ठेठ हिंदी क्षेत्र में ब्रज का ग्रामीण अंचल कोष्ठक में ब्रज का मूल अर्थ ही हुआ गोचारण का स्थल, और महर के मंदिर पर बधाई बजने का दृश्य मानो नंद का पूरा पारिवारिक पसारा आंखों के सामने आ जाता है। यही सूर के कृष्ण की लीला भूमि है। पारिवारिक जीवन के हर कोण से यहाँ चित्र उकेरे गए हैं। मध्यदेशीय जीवन विशेषतः सारे तनावों और आघातों को परिवार के आत्मीय वातावरण में झेलने का अभ्यस्त रहा है। यहाँ के समाज में तटीय जीवन की साहसिकता नहीं, मैदानी जीवन की शांति और सुरक्षा कामना अधिक है। परिवार इस सुरक्षा कामना का चरम प्रतीक है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए जब आचार्य शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी, तो उनकी आशंसा समझ में आती है। विषम परिस्थितियों के बीच किसी जाति की जीवन इच्छा को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक उपलब्धि है। यद्यपि आलोचक ने अपनी शैली के अनुसार इसे अत्यंत मित कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन के प्रति अनुराग जगाना परिवार के भावात्मक आकर्षणों का उद्घाटन करके ही संभव था, और यही सूरदास ने किया है। फिर यह पारिवारिकता, गृहस्थ जीवन और गोचारण का वातावरण मिलकर कृष्ण तथा राधा के प्रणय जीवन का अनिवार्य संदर्भ बनते हैं। यही कारण है जिससे इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं। यह प्रेम आगे चलकर एकांतिक हो जाता है, इसकी शिकायत बार बार की गई है। इस संबंध में जैसा कहा गया, मुख्य भूमिका कृष्ण के अपने वृत्त की है। उसका फैलाव इतना अधिक है कि कवि एक बार में उसके एक विशिष्ट पक्ष को उभारते हैं। महाभारत, उसका एक भाग गीता और श्रीमद् भागवत में एक ही कृष्ण का पृष्ठ संख्या 46 चरित्र है, यह बहुत बल देने पर याद आता है। भारतीय पौराणिक विराट माला में विराट रूप अकेले कृष्ण का प्रदर्शित हुआ है। उनके व्यक्तित्व के ये विविध पक्ष अपने में व्यापक होते हुए भी एक दूसरे की सापेक्षता में एकांतिक लगने लगे तो यह स्वाभाविक है। सूरदास ने अपने वृत्त की इस कठिनाई को पहचाना और इसलिए कृष्ण जीवन के आरंभिक दो चरणों बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तरुणाई के संधि स्थलों को चुनकर उनकी आंतरिक संगति बनाने में ही अपने कवि कर्म को सार्थक माना। बालक गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। उसकी दृष्टि से परिवार का और परिवार की दृष्टि से उसका सौंदर्य चित्रण सूर के लिए अभीष्ट रहा है। गोपियां कृष्ण की शिकायत के बहाने उन्हें देखने को आती हैं। अपनो गांव लेउ नंदरानी, कोई कोई यशोदा की शिकायत भी करती है, महरी तय बड़ी कृपण है माई। इन शिकायतों के रूप में मूलतः ब्रज का गृहस्थ जीवन ही चित्रित हुआ है। यदि ये शिकायतें गोपियों के लिए बहाना है तो और गहरे स्तर पर कवि के लिए भी। यहाँ केवल वात्सल्य का चित्रण नहीं वरन उसे केंद्र में रखकर समूचा घर परिवार कुटुंब चित्रित होता है। कृष्ण की ब्योरेवार दिनचर्या, संस्कारों और उत्सवों के क्रमिक चित्रण में एक पूरा परिवार और ग्रामीण समाज उभर कर सामने आता है। आगे चलकर युवा कृष्ण का जीवन भी एकदम निरपेक्ष या एकांतिक नहीं है, पूरा गांव किसी न किसी रूप में उसमें भागीदार है। बसंतोत्सव और रास के विविध सामूहिक आयोजन इसके व्यवहारिक प्रमाण हैं। विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है, जहां प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में है। इतिवृत्त का इससे अधिक बंधन राजमहलों से बाहर गोचारण के वातावरण में अटपटा लगता। सूर सागर पर कार्य करने वाले विद्वान उमा शंकर शुक्ल तथा ब्रजेश्वर वर्मा ने लक्षित किया है कि बाल लीला के पदों में कवि ने कृष्ण की आयु के जो क्रमिक संकेत रखे हैं, कोष्टक में एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई ऑब्लिक कान कुंवर की करहु पासनी कछु दिन घटी षट मास गए ऑब्लिक उमंगी ब्रज नारी सुभग कान बरस गांठी उमंग चहती बरस बरसनी ऑब्लिक पांच बरस को मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात ऑब्लिक पांच बरस अरु कछुक दिनन को कब भयो चोरी जोग ऑब्लिक सूर जमुन तट डेरा दीने पांच बरस के कुंवर कन्हाई कोष्ठक बंद। वे पूरी रचना में कथाक्रम की स्थिति के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सूर सागर का अंत रुक्मिणी की उत्सुक सहमति के साथ राधा कृष्ण की संक्षिप्त भेंट में एक अजब ट्रेजिक वातावरण की सृष्टि करता है। इतनी गहमा गहमी के बाद ऐसा प्रशमित वातावरण, पद्मावत तो पूरी तरह ट्रेजेडी है। पद्मिनी के जौहर स्थल पर पहुंचकर अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लेकर उड़ा देता है। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पिरथी में झूठी। यहाँ संसार की नश्वरता की ओर तो मार्मिक संकेत है ही। इस्लामी प्रथा के अनुसार शव के अंतिम संस्कार के समय एक मुट्ठी मिट्टी देना भी है। सूर सागर के समापन का ट्रेजिक वातावरण जहाँ राधा कृष्ण की अत्यंत संक्षिप्त भेंट में है, वहाँ इस आध्यात्मिक आश्वासन में भी है कि ब्रज में तो राधा कृष्ण का नित्य विहार हुआ करता है। बिहासी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। यहाँ आश्वासन कुछ ऐसा उलट गया है जैसे ब्रज भाषा में बिसासी शब्द का अर्थ विश्वासघाती हो गया है। आदि से अंत तक सूर सागर का यह उन्मुक्त प्रबंध अपने विधान में पृष्ठ संख्या 47 बेजोड़ है। परिवार के संदर्भों में पली या प्रणय गाथा जितनी सौंदर्यमय है उतनी ही कारुणिक। सूर में पारिवारिक जीवन की प्रामाणिकता और रसमयता बढ़ाने वाला एक तत्व और है गोपालन, जिससे कृष्ण होते हैं गोपाल। आगे चलकर दोहरे अर्थ में बालक और गाय गृहस्थ जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, भावात्मक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर। इन दोनों के सूर सागर में कितने प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप हैं जिनकी गिनती कठिन है। माधो जू यह मेरी इक गाई अब आज ते आप आगे दई ले आइए चराई। मन का हरहा गाय के रूप में चित्रण जितना सटीक है उतना ही संदर्भ और परिवेश से जुड़ा हुआ है। परंपरित अलंकार विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत एक दूसरे के इतने निकट कम आते हैं।